الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. اس کلاس میں ہم تسہیل بہشتی زیور کتاب میں سے کتاب السلوک والاحسان پڑھ رہے ہیں، جن میں کہ پہلا جو ذیلی موضوع تھا، یعنی سب عنوان تھا، وہ تھا اخلاق ذمیمہ اور ان کا علاج. اس میں حضرت اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے ان اخلاق ذمیمہ یعنی مذمت یافتہ برے اخلاق، برے مینرز، بیڈ مینرز، ان کا ذکر کیا تھا کہ جو کہ انسان کو صحیح معنوں میں انسان بننے سے روکتے ہیں. جب تک یہ برے اخلاق کسی کے اندر رہیں تو وہ صحیح معنوں میں اشرف المخلوقات نہیں بن پاتا. بس نام کا اشرف المخلوقات کہلا سکتا ہے، لیکن کام کا نہیں. کام کا بننے کے لیے اخلاق ذمیمہ کو دور کرنا پڑتا ہے، ان کا علاج کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ بیماری کی مانند ہوتے ہیں اور بیماری علاج کرنے سے ہی دور ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جو دوسرا عنوان تھا وہ تھا اخلاق حمیدہ اور ان کے حصول کے طریقے. حمیدہ یعنی جن کی حمد کی جائے، جن کی تعریف کی جائے، ایسے اخلاق، تعریف یا کے قابل اخلاق، تو ان کو وہ کون کون سے ہوتے ہیں اور ان کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، تو ان کے اوپر بھی سیر حاصل گفتگو ہو چکی ہے. ریکارڈنگز میں الحمدللہ سب موجود ہے. پھر تیسرا عنوان تھا کہ شیخ کامل کے ساتھ تعلق، تو اس کے اوپر ہم پچھلی کئی کئی کلاسز سے بات کر رہے ہیں. شیخ کامل کا مطلب کیا ہوتا ہے، لفظ کامل یہاں پر اس سے کیا مراد ہے، پیری مریدی کیا چیز ہوتی ہے، اس کے بارے میں کیا غلط فہمیاں ہیں اور کیا صحیح فہمیاں ہیں. پیری مریدی کے بارے میں شیخ کامل کی علامات بھی ہم نے پڑھی تھیں، مرشد سے تعلق کے آداب بھی پڑھے تھے، حتیٰ کہ اگر بے دین پیر سے تعلق ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے. اور پھر آخر میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ مرید بلکہ ہر مسلمان کی روز مرہ زندگی کے آداب. اصل میں تو حضرت یہاں پر مریدوں کی بات کر رہے تھے کہ بھئی شیخ کامل کے ساتھ تعلق، جس مرید جس نے بنایا ہوا ہو اس کو مرید کہتے ہیں. ارادہ یرید ارادتن فہوا مریدن، ارادہ کرنے والا اس کو مرید کہا جاتا ہے. لیکن لکھتے لکھتے حضرت کو خیال آیا کہ بھائی یہ صرف مرید یعنی جس نے اصلاحی تعلق شیخ کے ساتھ بنایا ہوا ہے اس کے لیے تو آداب نہیں ہے، تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، چاہے اس کا تعلق نہ بھی ہو کسی شیخ کے ساتھ. تو ہر مسلمان اگر اس کو اپنے لیے ضروری سمجھے گا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر اس کو خود ہی لگ پتا جائے گا کہ شیخ کامل کے تعلق کے بغیر یہ کرنا جو ہے وہ جوئے شیر لانے سے بھی زیادہ مشکل ہے، مترادف بھی نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. شیخ کامل کے تعلق کے بغیر ان آداب کو اپنے اندر پیدا کر لینا، یہ یعنی ہمالیہ پہاڑ کی چوٹی سر کر لینے سے بھی زیادہ مشکل ہے. تو پھر وہ مرید بن ہی جائے گا پھر اس کے بعد، ٹھیک ہے نا؟ تو سب کے لیے پھر ٹائٹل لکھ دیا کہ سب کے لیے آداب زندگی. تو ان میں سے پھر ہم 24 پچھلی کلاس کے اندر پڑھ چکے تھے اور 25واں آج پڑھیں گے انشاءاللہ، وہ ہے ہمیں نہ اتنی کمی کرے کہ کمزور یا بیمار ہو جائے، اور نہ اتنی زیادتی کرے کہ عبادت میں سستی ہونے لگے. तो एतदाल जैसे हर चीज के अंदर जरूरी होता है, उसी तरह खाने पीने के अंदर भी। तो कमी करना, वो आजकल वैसे तो बहुत कमी ऐसा होता है कि कोई खाने पीने में कमी करे, लेकिन हैवी क्लास खवातीन की, और खवातीन के अंदर जरा ज्यादा इस बात की कॉन्शियसनेस, ज्यादा इस बात का ख्याल होता है कि उनके लुक्स कैसे हों, उनका वजन जो है वो ज्यादा ना बढ़े। और कुछ लोगों ने भी पैदा किया हुआ होता है कि वो पतली दुबली और नाजुक अंदाम जो होती हैं, तो उनकी दूसरों के मुंह पे ऐसी तारीफें कर रहे होते हैं कि जो मोटी थोड़ी सी हो जाती हैं तो उनको खुद ही जो है ना वो बहुत शदीद एहसास हो जाता है कि जी मेरा वजन बढ़ गया है। ठीक है, तो अगर अदरवाइज एहसास ना भी होता तो लोगों के दिलाने के ऊपर एहसास हो जाता है, तो फिर उसका लाजमी नतीजा ये होता है कि डाइटिंग की जाए और खाने को कंट्रोल किया जाए वगैरह। तो इसके अंदर इत्तेदाल रखें कि कमजोरी या बीमारी की हद तक ये ना पहुंच जाए। तो इसके लिए ना ज्यादा बेहतर तरीका जो है वो डाइट को बहुत ज्यादा कम कर देने की बजाय एक्सरसाइज करना होता है। डाइट को बहुत ज्यादा कम कर देने की बजाय एक्सरसाइज करना, वर्जिश करना। ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम ने मर्दों को एक्सरसाइज बताई स्विमिंग करना, स्विमिंग करना। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ औरतों को एक्सरसाइज स्विमिंग करना नहीं बताई। ठीक है, बल्कि औरतों का जब आया, जब बात आई तो उनको जो है वो चरखी काटना, एक घर के अंदर बैठ करके चक्की पीसना बल्कि। ठीक है, तो चक्की पीसना जो है वो अब हम घरों के अंदर चक्की दौड़ाने से रहे, तो आजकल की चक्की जो है ना वो ट्रेडमिल होती है। ठीक है, ट्रेडमिल बहुत सारे लोग अफोर्ड कर लेते हैं, अगर फर्स्ट हैंड अफोर्ड ना कर सकें तो सेकंड हैंड अफोर्ड कर लेते हैं, थर्ड हैंड अफोर्ड कर लेते हैं। ठीक है, तो वेबसाइट्स के ऊपर भी आजकल ऐसे वेबसाइट्स होती हैं, expat.com जैसे कि सऊदी अरब के अंदर एक वेबसाइट है, तो उसके ऊपर लोग अपनी पुरानी चीजें बेच रहे होते हैं। हर मुल्क के अंदर अब तो ये सब मौजूद है। तो पुरानी एक ट्रेडमिल खरीद लें और उसके ऊपर तौलिया सुखाने के बजाय जो है वो दिन में 1 घंटा, आधा घंटा, जितना भी मुमकिन हो एक्सरसाइज कर लें। उसके अलावा जरूरी नहीं है कि ट्रेडमिल होगी तभी एक्सरसाइज होगी, उसके बगैर भी एक्सरसाइज हो सकती है। ठीक है, तो कुछ ख्वातीन जो है ना उनको स्विमिंग का बहुत ज्यादा शौक होता है, तो हम उनको सख्त डिस्करेज करते हैं इससे। सबसे पहली बात तो एक मोमिन के लिए काफी है, मोमिना के लिए, कि नबी अलैहिस्सलाम ने स्विमिंग मर्द औरतों के लिए नहीं बताई। ठीक है, खासकर वहां पे मर्दों का जिक्र है जहां पे स्विमिंग का जिक्र है, औरतों के लिए नहीं है। ठीक है, फिर ये कि आपके घर के अंदर चलो कोई पूल हो तो आप जो है वहां पे हिफाजत का कंप्लीट एहतमाम के साथ वहां पे अल्लाह ताला ने दिया है तो फिर उसको इस्तेमाल करें। ठीक है, लेकिन घर से बाहर जा करके ऐसे चुस्त कपड़े पहनना, या ये कि कपड़े आपने ढीले पहने हैं लेकिन जब पानी से निकलेंगी तो फिर तो वो चुस्त हो जाएंगे ना। ठीक है, तो घर से बाहर जा करके औरत के लिए तो इसका तसव्वुर ही नहीं ना, ईमान वाली औरत के लिए, कि वो इस किस्म का कपड़ों के साथ अपना मुआमला करे। ठीक है ना, और ये बात भी याद रखें, ये बात भी याद रखें, भूले नहीं इस बात को, समझ लें इस बात को, कि स्पेशली आज के दौर में, तो पुराने दौर में तो औरतें घर से बाहर ही नहीं निकलती थी, और वो भी स्विमिंग करने के लिए या जिम जाने के लिए। ठीक है, उसका तो कोई तसव्वुर ही नहीं था ना पुराने जमाने में। आज के जमाने में सारे तसव्वुरात आए हुए हैं, दीनदारों के अंदर भी आए हुए हैं, बहुत दीनदारों के अंदर भी आए हुए हैं, अल्लाह रहम करे हमारे ऊपर, बहुत सारे और भी इससे भी ज्यादा खतरनाक तस्वर दीनदारों के अंदर आए हुए हैं इस वक्त, और हम उनमें शामिल हैं अनफॉर्चुनेटली। तो उसी तरह से स्विमिंग का भी आया हुआ है। तो आज के दौर के लिए बात याद रखें कि इस दौर के अंदर जो है ना ये जो हिडन कैमराज होते हैं ना, हिडन कैमराज, ये बाएं हाथ का काम है। किसी के लिए भी हिडन कैमराज इंस्टॉल कर देना ये बाएं हाथ का काम है, यानी बहुत आसान काम। आपके हर फोन के अंदर कैमरा हो, और उसके अलावा कैमराज जो है वो बड़ी आसानी से मार्केट के अंदर अवेलेबल हो, और उनको जो है ना बड़ी आसानी से रिमोटली मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, तो किसी ने जो है वो स्विमिंग पूल के एरिया के अंदर कैमरा लगाया हुआ हो, आपको वहमो गुमान में भी आप यानी आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो कैमरा कहाँ लगा। ठीक है ना, अभी तो ये हाल है कि बाकायदा हमने आर्टिकल्स पढ़े हैं कि जो होटल के कमरे होते हैं ना, ठीक है, होटल के कमरे होते हैं, लोगों ने उनके अंदर कैमरे फिट किए हुए होते हैं, ठीक है, होटलों के कमरे के अंदर कैमरे फिट किए हुए होते हैं। तो आर्टिकल में लिखा हुआ था कि आप जो है वो कैसे होटल के कमरे के अंदर जाकर के कैमरा तलाश कर सकते हैं, उसकी टेक्निक्स लिखी हुई थी, बहुत मुख्तलिफ, कुछ अच्छी हैं, कुछ बेकार हैं, कुछ ज्यादा मुफीद हैं, कुछ कम मुफीद हैं, लेकिन 10 टेक्निक्स लिखी हुई थी कि आप होटल के कमरे में जा करके कैसे कैमरे को डिटेक्ट करें, ठीक है। फिर चलो भाई, अब ये सवाल आता है कि भाई होटल में तो हमें मजबूरी जाना होता है, जब हम सफर पे जाते हैं, उम्रे पे जाते हैं, हज पे जाते हैं, या किसी और जगह जो है वो हमें होटल लेना पड़ता है, तो वहां पर जो है वो, यानी ये तो मजबूरी है, जाना है, ठीक है। तो भाई उसके अंदर दो बातें याद रखें कि होटल के कमरे के अंदर जाना जो होता है ना, वो जरूरत के तहत होता है, जाना पड़ता है, हज उमरे के लिए जाएंगे या किसी और जगह जाएंगे, हो सकता है। उसमें दो बातें याद रखें, एक तो ये याद रखें कि सबसे पहले दीन की बात, सबसे पहले दीन की बात, तो दीन का उसूल ये, हरजा फिद दीन, दीन के अंदर हरज नहीं है। हरज का मतलब क्या होता है कि जब किसी चीज के लिए आपको जरूरत होती है ना, तो अब उसके लिए आपको बहुत ज्यादा फिक्रमंद और परेशान होने की जरूरत नहीं है हिफाजत का एहतमाम करने में, क्योंकि वो जरूरत है। और जब किसी चीज की जरूरत होती है ना, तो फिर अल्लाह ताला हिफाजत का इंतजाम कर देते हैं। अल्लाह ताला है कि नहीं है, राइट? अल्लाह ताला है ना, तो अल्लाह ताला हिफाजत का इंतजाम करते हैं जब इंसान जरूरत के तहत कोई खिलाफ कयास काम करता है। खिलाफ कयास काम ये है कि भाई घर से बाहर निकल करके आप दूसरे घर में जा करके ठहर रहे हैं, ये खिलाफ कयास काम है, खुसूसन औरतों के लिए। तो जब खिलाफ कयास काम औरत कर रही है लेकिन जरूरत है, तो अल्लाह ताला की तरफ से हिफाजत का इंतजाम होता है, लेकिन जब जरूरत नहीं है तो फिर ये कोई उसूल नहीं है कि अल्लाह ताला फिर भी आपकी हिफाजत करेंगे, फिर भी आपकी हिफाजत करेंगे, क्यों भाई? ठीक है, तो इस वजह से होटल के अंदर आप पैरानॉइड नहीं हो सकते होटल के बारे में, पहली बात, ठीक है ना, पहली बात होटल के कमरे के बारे में आप पैरानॉइड, यानी बहुत ही, यानी नफसियाती तौर पे जो है वो परेशान होने की जरूरत नहीं है, नफसियाती मरीज बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जरूरतन आप जा रहे हैं वहां, और फैमिली आउटिंग भी जरूरतन होती है, ये भी जरूरत में दाखिल है, फैमिली के साथ आउटिंग करना ये भी जरूरत में दाखिल है, ठीक है ना। हलाल आउटिंग फैमिली के साथ, नियत अल्लाह की रजा हो, दीन की हिफाजत हो, तो फिर ये भी जरूरत में शामिल है, ठीक है ना। ऐसे मौलवी तो हमारे मौलवी, हमारे उलमा तो यही बात करते हैं, हम कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि होटल का जो कमरा होता है ना, तो वो होता है एक बहुत ही, यानी छोटी सी जगह, ठीक है, तो वहां पर इवन आप सर्च भी कर सकते हैं आसानी के साथ, ठीक है, कैमरा, छुपे हुए कैमरास को आप सर्च भी कर सकते हैं, क्योंकि वो कमरा आपका अपना होता है और आपके अलावा वहां कोई और नहीं होता। अब आप जो है ना बाकायदा तहकीक कर सकते हैं वहां पे, ज्यादा सा आपको आधा पौन घंटा लगेगा, तो आप तहकीक कर सकते हैं, कैमरा तलाश कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके बरअक्स जो स्विमिंग पूल का एरिया होता है, वो बड़ा एरिया होता है, वहां पे सर्च करना वैसे भी मुमकिन नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि क्या ख्याल है, आप जब किसी कमर्शियल स्विमिंग पूल एरिया के अंदर जाएंगी स्विमिंग करने के लिए, तो वहां पे आप जाके कैमरा सर्च कर सकती हैं, दूसरे लोग आपको पत्थर मारना नहीं शुरू कर देंगे, यानी दीवाना समझना नहीं शुरू कर देंगे, और उनके दीवानगी के समझने के खौफ से जो है वो आप सर्च करने से रुकी नहीं रहेंगी, राइट? कि लोग आपको पता नहीं क्या कहेंगे, दीवाना कहाँ से कौन आ गई है वहां, यहाँ पे आकर के जो है वो कैमरा सर्च कर रही है, हम पागल हैं क्या, हम यहाँ पे ऐसी आ गए हैं क्या, हमें ये बात नहीं पता क्या, और एक से एक चीजें होती हैं। तो यानी किसी के बस में है ये कि वहां पे जाकर के आप कैमरा सर्च करें, कमर्शियल, चाहे वो किसी होटल का स्विमिंग पूल एरिया हो, चाहे वो किसी और किस्म का, किसी क्लब का स्विमिंग पूल एरिया हो, या किसी जिम का एरिया हो, वहां पे जाके कैमरा से, अब बताए ना मुझे कोई यहाँ पे, नहीं जी मैं तो करती हूँ जाकर के सर्च, राइट? तो टेक्नोलॉजी जो है ना वो इस जमाने के अंदर इतनी तरक्की कर चुकी है कि वो ऐसे कैमराज इंस्टॉल करेंगे आपके आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि कहाँ पे कैमरा इंस्टॉल हुआ। और आप ऐसे नहीं जाकर के सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा क्लोजली वॉच करना पड़ता है, बहुत ज्यादा आपको पीक अराउंड करना पड़ता है। ठीक है, तो अब आपको कोई फिक्र नहीं है कि लोग आपको किस हुलिये में देखेंगे, लोग आप अब पूरा कपड़ा पहने, भाई पानी से जब निकलते हैं तो कपड़ा जो है वो जिस्म के साथ चिपक नहीं जाता है। ठीक है, तो भाई छोटे एरिया के अंदर, और वो भी एक लिमिटेड टाइम के लिए, और वो भी ऐसी जगह के जहां पे बहुत एहतमाल हो कि भाई कोई एक ही, जैसे हम भी जाते हैं इस्तराहा में जाते हैं, फैमिलीज को लेकर के जाते हैं, वहां पे स्विमिंग पूल का इंतजाम भी करते हैं, स्विमिंग के लिए नहीं, पानी के अंदर जो है वो अपने आप को थोड़ा ठंडा करने के लिए, खवातीन को भी मौका मिले वो भी थोड़ा सा वहां पे रिलैक्स कर सकें। ठीक है, लेकिन वो एक लिमिटेड एरिया होता है, और वहां पर के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं ना वो एक या दो बंदे होते हैं ज्यादा से ज्यादा। इस तरह जो सऊदी अरब में रहने वाले हैं वो बात को ज्यादा आसानी से समझ सकेंगे, या पाकिस्तान इंडिया के अंदर जिनको फार्म हाउस वगैरह कहा जाता है, तो वहां के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं वो एक या दो बंदे होते हैं। उनका कैमरा इंस्टॉल करना अगरचे के मुमकिन है कि वो भी कैमरा इंस्टॉल कर दें ऐसी जगह के ऊपर, लेकिन वहां पर खौफ उनको ये है कि अगर वो पकड़े गए ना, जो कि पकड़ना इतना मुश्किल काम नहीं है वहां पे, क्योंकि वो आपके आपकी फैमिली के पास है वो एरिया, या आपके जो क्लोज सर्कल है उसके पास वो डेडिकेटेडली वो एरिया आपके पास अवेलेबल है, अब आप वहां पे सर्च कर सकते हैं। तो अगर वो पकड़े गए फिर तो वो उल्टे लड़ जाएंगे ना, गवर्नमेंट में आप रिपोर्ट कर देंगे, पुलिस में आप रिपोर्ट कर देंगे, खुसूसन सऊदी अरब के अंदर, फिर उनका क्या बनेगा उसके बाद, होते भी बेचारे गरीब गुरबा किस्म के लोग होते हैं, फिर तो उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी ना, तबाह हो जाएगी ना। तो वहां पर एक इंतहा दर्जे का खौफ है कि वो इस किस्म की हरकत नहीं करेंगे, लेकिन किसी बड़े होटल के अंदर वहां पे इस किस्म का खौफ नहीं होता, बहुत सारे काम करने वाले होते हैं, कोई भी जो है जाकर के वहां पे कैमरा इंस्टॉल कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि आपके लिए कोई जरूरत नहीं है वहां पे, आपको एक्सरसाइज करनी है घर में क्यों नहीं करती, नखरे बनाए हुए हैं खाली, ऊंचे नाज नखरे और चौंचले बनाए हुए हैं कि नहीं जी मैं तो स्विमिंग पूरी में जाकर के स्विमिंग करूंगी तभी मेरी एक्सरसाइज होगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बात पता नहीं थी कि मर्दों को जो है वो तैराकी का फरमा रहे हैं, औरतों को जो है घर के अंदर चक्की पीसने के लिए कह रहे हैं, राइट। तो इस किस्म की ना हम हरकतें करते हैं, फिर आगे से जब पकड़ आती है तो फिर हमारी जिंदगी भी, दुनिया की जिंदगी भी बर्बाद होती है, आखिरत की तो बाद में बर्बाद होगी, दुनिया की भी जिंदगी बर्बाद होती है, और हमें अपने ये मसले नजर नहीं आ रहे होता कि ये हमारा अपना किया धरा होता है, ये हमारा अपना किया धरा होता है कि जिसकी वजह से हमारे ऊपर पकड़ आती है, फिर एक से एक मुसीबतों का शिकार होते हैं, फिर उसके बाद रोना रोते हैं मैंने क्या किया था, मेरे ऊपर ऐसे मसले क्यों आ गए, मेरे ऊपर ऐसी मुसीबतें क्यों आ गई, राइट। तो इस बात को जो है ना अपने अंदर से कुछ निकालने की जरूरत है, जिन लोगों के अंदर फंसी हुई है ना ये जरा निकालने के ऊपर मेहनत करें। यू डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेस, दैट्स योर प्रॉब्लम, यू डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, तो सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। तो एक्सरसाइज करें घर के अंदर, एक्सरसाइज करें, ठीक है ना, उसके लिए मशीन्स लेकर के आए, अगर आपके पास पैसे अल्लाह ताला ने दिए तो घर में पैसे खर्च करें ना उसके लिए। क्या लिखा है इन्होंने, पिछले दिनों एक वर्कआउट देखा जो बिल्कुल चक्की पीसने के स्टाइल में एक जगह बैठे बैठे किया जा सकता है। जी वर्कआउट जो है वो बड़ी आसानी से किए जा सकते हैं, बहुत सारे हैं, अब तो वीडियोस भी उसकी मौजूद होती हैं, वो भी अगर ध्यान से एहतियात के साथ जो है वो औरतें देख सकती हैं, औरतों की ही वीडियोस होती हैं ये एक्सरसाइज वीडियोस हैं, तो बस सीखने के लिए जो है वो इंसान देख ले, बुक्स के अंदर अवेलेबल होता है, मैगजीन्स के अंदर अवेलेबल होता है, तो वो सीखने बहुत हजार तरीके होते हैं करने के, या वॉक पे चले जाए भाई पार्क में अपने शौहर के साथ जाए वॉक करने, औरतों को भी है ना मुसीबत, औरतें मिलकर के चली हैं सड़क पे वॉक करने जा रही हैं, तो कहीं इधर उधर वॉक करने जा रहे हैं, तो शौहर को, शौहर ने लिफ्ट नहीं करानी होती, शौहर के पास टाइम नहीं होता आपके लिए, तो चलो जी किसी और को पकड़ो, खाने पीने में ना इतनी कमी करे कि कमजोर या बीमार हो जाए, ना इतनी ज्यादती करे कि इबादत में सुस्ती होने लगे। ज्यादती करने का मतलब क्या होता है कि उससे इबादत में सुस्ती क्यों होती है, कि ज्यादा खाने से फिर नींद भी ज्यादा आती है और ज्यादा खाने के बाद फिर उसको निकालने भी जाना होता है और उधर बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है फिर। ठीक है, तो फिर इबादत यानी अल्लाह की रजा वाले जो काम करने थे तो वो तो इस 24 घंटे के अंदर ही करने थे। जब इस 24 घंटे के अंदर जो है वो जरूरत से ज्यादा नींद में वक्त लगा दिया या जरूरत से ज्यादा जो है बाथरूम में वक्त लगा दिया, तो फिर वो 24 घंटे तो आपके पास थोड़े से रह गए, तो फिर इबादत कैसे करेंगे, नेकी के काम कैसे करेंगे, इल्म कैसे हासिल करेंगे। ठीक है, कुछ सवाल तो पूछ लिएगा। आगे फरमाते हैं पॉइंट नंबर 26 कि अल्लाह ताला के सिवा किसी से लालच ना रखे कि फुला जगह से हमें ये फायदा हो जाएगा। ठीक है, अल्लाह ताला की जात से फायदा होगा, अल्लाह ताला के पास सारे खजाने हैं, सारे खजानों की चाबियां भी हैं, खजाने भी हैं, सब कुछ है। ठीक है, तो जिसको भी जिसने दिया हुआ है अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, जो अल्लाह ताला उसको दे सकता है अल्लाह ताला मुझे भी दे सकता है, और अगर मुझे नहीं दिया हुआ तो ये अल्लाह ताला की हिकमत है कि मुझे नहीं दिया हुआ, फलाने को दिया हुआ है। ठीक है, तो माल पर राल न टपके, ये हमारे हजरत फरमाते हैं माल पर राल न टपके। हम होते हैं ना किसी के पास माल देख लिया, किसी के पास गाड़ी देख ली, किसी के पास जो है वो ज्यादा महंगे जूते देख लिए, जूतियां देख ली, कपड़े देख लिए, राल टपकनी शुरू हो जाती है फौरन, फिर उसके बाद शौहर का दिमाग खराब करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हिर्स व हवस जो है ना इसको अपने अंदर से निकालने के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह बहुत हिर्स आ गई मेरे अंदर, इसको निकाल दीजिए। ठीक है, बच्चों को सिखाने के लिए सिर्फ बोलने से बच्चों ने नहीं सीख करके देना है, अगर वो अपने माँ को देख रहे हैं या अपने बाप को देख रहे हैं कि इनकी तो हर वक्त राल टपकती रहती है, गाड़ियों को देख देख करके या घरों को देख देख करके या किसी और चीजों को देख देख करके, तो बच्चे उसको पिक करते हैं और बच्चे एग्जैक्टली फिर वही काम करेंगे। अब आप उनको लाख नसीहतें करते रहे बैठ करके, लेकिन अपना अमल जो है ना वो चेंज ना करें, अपना मिजाज चेंज ना करें, अपनी जहन की सोच चेंज ना करें, बच्चों ने नहीं पिक करना फिर बाप को, बच्चों ने आपकी नसीहत को नहीं सुनना है, बच्चों ने तो अपने माँ बाप को देखना है और उनको फॉलो करना है। ठीक है, चले जी, इन्होंने कोई डाइटिशियन है, डाइटिशियन तो उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि जी बीइंग अ डाइटिशियन आई एग्री टू व्हाटएवर यू सेड, एक्टिव लाइफस्टाइल प्लेज मोर इंपॉर्टेंट रोल देन रिस्ट्रिक्टिंग मील्स, इवन हाफ एन आवर वॉक कैन डू द जॉब, मेन फोकस इज टू बर्न एक्स्ट्रा कैलोरी व्हिच वॉकिंग कैन ऑल्सो डू। ठीक है ना, और घर के अंदर भी इतनी गुंजाइश हो जाती है अक्सर घरों के अंदर, ठीक है सबके घर में इतनी गुंजाइश नहीं होती कि वॉकिंग की जा सकती है ना। ठीक है, वरना यानी ये थर्ड हैंड सेकेंड हैंड ट्रेडमिल ले लें और उसके ऊपर तो वॉकिंग उसके लिए कोई जगह भी नहीं चाहिए होती, इतनी सी होती है जितना एक मसल्ले की जगह होती है तकरीबन, उतनी जगह लेती है ये ट्रेडमिल आजकल, बहुत आसानी से ऐसी ट्रेडमिल भी मिल जाती हैं जो कि जब आपने इस्तेमाल किया उसके बाद आप उसको खड़ा कर दें तो और भी जगह जो है वो कम लेती है फिर वो कमरे के अंदर। ठीक है, अल्लाह ताला के सिवा किसी से लालच ना रखे कि फलां जगह से हमें ये फायदा हो जाएगा। तो यहाँ पे फायदा हो जाने का मतलब ये है कि कोई नाजायज तरीके से जो है ना वो फायदा हासिल करने की कोशिश करें। बाकी ये कि अल्लाह ताला ने इंसानों को या दुनिया के अंदर असबाब रखे हैं फायदे के लिए। ठीक है, तो अल्लाह ताला से फायदा तो होता है लेकिन अल्लाह ताला असबाब को इस्तेमाल करते हुए फायदा पहुंचाते हैं, तो वो इंसान के जरिए से फायदा पहुंचाते हैं, किसी दुकान के जरिए से फायदा पहुंचाते हैं, किसी और जरिए से फायदा पहुंचाते हैं। ठीक है, तो जायज हदूद के अंदर असबाब इख्तियार करना फायदा हासिल करने के लिए इसकी ममानियत नहीं हो रही है बल्कि लालच की ममानियत हो रही है ना, हिर्स की, और ये जो है नाजायज तरीके से फायदा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, या ये कि इसकी भी ममानियत हो रही है कि असबाब से फायदा हासिल करते करते मुसब्बिबुल असबाब को बिल्कुल भुला दिया कि भाई ये असल में तो मुसब्बिबुल असबाब अल्लाह ताला की तरफ से फायदा मिल रहा है मुझे जो कि इसके वास्ते से मिल रहा है। ठीक है, वास्ते को याद रखा और जो उसका सोर्स था उसको भुला दिया, तो ये अल्लाह ताला की नाशुक्री है, नाकदरी है। ठीक है, और इसी तरीके से फिर एक जायज काम भी जो है ना वो भी नाजायज बन जाता है, फतवे में नहीं बनता, तकवे में नाजायज बन जाता है। जब आप जायज काम कर रहे हो लेकिन अल्लाह को फरामोश करके कर रहे हो, तो फतवा तो उसके लिए यही होगा कि हाँ भाई ये जायज काम है, बिकॉज वो फतवे के अंदर जायज है, फिका के अंदर जायज है। लेकिन जब अल्लाह को फरामोश कर दिया जाता है तो तकवा के मेयार के ऊपर वो पूरा नहीं उतरता फिर, ठीक है, तो वहां पर रोना जाए तो जाता है फिर। 27वां पॉइंट, अल्लाह ताला की मारिफत के लिए बेचैन रहे। अल्लाह ताला की मारिफत के लिए बेचैन रहे, क्या मतलब इसका? अल्लाह ताला की मारिफत के लिए बेचैन रहे, अल्लाह ताला की पहचान। मारिफत का मतलब क्या होता है? पहचानना, ठीक है, जानना, पहचानना, ठीक है। तो एक हमारा लेवल ऑफ एक्वेंटेंस किसी के साथ होता है कि बस पता है कि हाँ भाई इनका ये नाम है, ठीक है। एक होता है कि हम उनको जरा जानते भी हैं, तो जानने का मतलब क्या होता है कि हम उनकी आदतों को जानते हैं, हम उनकी सिफात को जानते हैं, क्वालिटीज उनके अंदर जो है उसको जानते हैं, ठीक है ना। तो ये एक अलग लेवल ऑफ जानना होता है ना, ठीक है। एक आपने सुना भी फलाने साहब जो है वो उनका ये नाम है, वो जो है वो फलाने जगह पे काम करते हैं, चले थोड़ी सी आपको जान हो गई कि हाँ उन्होंने वो फलाने जगह पे काम करते हैं, लेकिन उनका मकाम क्या है, उनकी अथॉरिटी क्या किया है, वो क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, वो किस चीज को पसंद करते हैं, किस चीज को नापसंद करते हैं, ठीक है, उनको खुश करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, अगर वो कोई बड़ी चीज है तो उनको खुश करने से मुझे क्या फायदा होगा, कैसे खुश कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ना फिर मारिफत कहलाती हैं। तो अल्लाह की मारिफत, तो अल्लाह की मारिफत जो है वो फिर उसके अनगिनत दर्जे, क्योंकि अल्लाह ताला की अजमत जो है वो लामुतनाही है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से हाँ वो खालिक है, ये भी अल्लाह ताला की एक मार्फत है, ठीक है, वो मालिक है, वो राजिक है, ये फिर मार्फत आपकी बढ़ रही है जब आप उसको राजिक भी समझना शुरू हो गए, मानना शुरू हो गए, समझना शुरू हो गए, हाँ भी वो रिस्क देने वाला, वही रिस्क देता है, वही चीजों की मिल्कियत रखता है अपने पास, ठीक है ना। फिर उसके बाद मार्फत, ये तो कुफारे मक्का के पास भी ये वाली मार्फत थी अल्लाह ताला की, कि वो खालिक है, कि वो मालिक है, कि वो राजिक है, ये मुश्रिकी ने मक्का के पास भी ये मार्फत मौजूद थी अल्लाह के बारे में, उसी अल्लाह जिसको कि हम जानते हैं अल्लाह, वही अल्लाह था, कोई और अल्लाह नहीं था जिसके बारे में उनको ये मार्फत हासिल थी, उसी एक अल्लाह के बारे में मार्फत हासिल थी। कौन सी मार्फत उनको हासिल नहीं थी, जिसका के नबी अलैहिस्सलाम इल्म लेकर के आए उनके पास, कौन सी मार्फत उनको हासिल नहीं थी, जल्दी से अगर आप बता दें तो कितना अच्छा हो जाए। खालिक मालिक राजक की मार्फत उनको हासिल थी, बल्कि बैतुल्ला का रब इसकी भी मार्फत उनको, कि जो हमारे यहाँ जो ये काबतुल्ला काबा बना हुआ है ना, इसका रब वो एक अल्लाह है, ये भी उनको मार्फत हासिल थी, कौन सी नहीं थी हासिल उनको? जी ईमान है अल्लाह के ऊपर तो जी इतनी तो हमें मार्फत होनी चाहिए ना, क्योंकि हम अपने आप को ईमान वाला कहलाते हैं, ठीक है। तो वो कौन सी मार्फत थी जो कि नबी अलैहिस्सलाम उनके पास लेकर के आए, जो उनके पास मौजूद नहीं थी? वो थी खुशी और रजावारी, जैसे उन्होंने लिखा है यहाँ पर, कि कौन सी चीज से अल्लाह ताला राजी होते हैं, खुश होते हैं, और कौन सी चीज से अल्लाह ताला नाराज होते हैं, ये मार्फत उनके पास नहीं थी। तो वो अल्लाह ताला को राजी जो है ना वो अपने मन मर्जी के हिसाब से करते थे, और अल्लाह ताला की जिस चीज को खुद नाराजगी समझते थे उससे जो है वो बचने की कोशिश करते थे। नबी अलैहिस्सलाम ने आकर के उनको बताया कि जिस चीज को तुम अल्लाह ताला की रजा का सबब समझ रहे हो, अल्लाह ताला की रजा का ये सबब नहीं है, ठीक है, कि जो है वो बुतों की इबादत करो, बुतों के सामने सजदा, और बुतों को जो है वो अल्लाह का शरीक ठहराओ, और साथ साथ जो है ना वो हाजियों को पानी पिलाओ, ठीक है, और जो है वो कुछ लोगों को कपड़ा पहना दो और कुछ लोगों के साथ जो है वो फलानी को ये नेकी कर दो और समझो कि अल्लाह ताला से राजी हो गया। नहीं, अगर तुम शिर्क करते रहोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी किसी नेक काम से राजी नहीं होगा। हर चीज जीरो है क्योंकि मल्टीप्लाइड बाय जीरो, शिर्क इज इक्वल टू जीरो। जो नेकी का काम करोगे 100,000 टाइम्स भी अगर उसका वजन होगा ना, तो वो तुम्हारे शिर्क के जीरो से मल्टीप्लाई होने के बाद जीरो हो जाएगा। ठीक है, शिर्क से तौबा करोगे तब अल्लाह ताला तुमसे राजी हो जाएंगे। फिर उसके बाद तुम 100,000 की बजाय खाली 10 टाइम्स भी कोई नेकी का काम करोगे तो वो 10 टाइम्स भी तुम्हारे नाम अमाल के अंदर लिखी जाएंगी, वरना नहीं लिखी जाएंगी। ठीक है, तो ये जो इल्म था ना, ये नबी अलैहिस्सलाम लेकर के आए थे। ठीक है ना, अब नबी अलैहिस्सलाम से जिन्होंने इस इल्म को सीख लिया वो सहाबी बन गए। ठीक है ना, वो सहाबी बन गए और दुनिया के सबसे ज्यादा इज्जत वाले नबियों के बाद सबसे ज्यादा इज्जत वाले वो इंसान बन गए और औरतें बन गईं। ठीक है ना, जिन्होंने इस इल्म को सीख लिया, और जिन्होंने सीखने से इनकार कर दिया वो काफिर बन गए। वही जो है वो मुशरिकीन बदस्तूर बाकी रहे, मुशरिकीन की ही हालत के अंदर, और काफिर ठहराए और हमेशा हमेशा की जहन्नुम के मुस्तहक ठहराए। सीखने सिखाने के लिए नबी अलैहिस्सलाम आए थे। अब जिन्होंने सीखना शुरू किया नबी अलैहिस्सलाम से, तो नबी अलैहिस्सलाम ने कभी कभी उनको जो है वो कुछ करामते शरामते भी दिखा दी। राइट, कि जहां पानी नहीं होता था तो वहां पे जो है वो पानी के अंदर उंगलियां डाल दी, ओहो पानी जारी हो गया उधर। कहीं जो है वो अपना थूक जो है वो कुएं के अंदर फेंक दिया तो वो कुआं जो है वो जारी हो गया। कहीं पे जो है वो पतीली के अंदर जो है ना वो अपनी तरफ से कुछ पड़ दिया तो उस पतीली का खाने खत्म नहीं होकर के दे रहा। ये नबी अलैहिस्सलाम के मुआवजे थे। ठीक है ना, ये लेकिन ये मुआवजे जो है वो जो लोग पहले से सीखने का इकरार कर चुके, जी हम आपसे सीखेंगे अल्लाह को कैसे राजी करना है, ये सारे मुआवजे जो है वो उनके लिए फायदा मंद बन गए। और जिन्होंने बात नहीं मानी उनके लिए मौजे भी फायदेमंद नहीं बने, चांद के दो टुकड़े कर दिए। लेकिन जो काफिर रहे और उन्होंने ना मानने की ना सीखने की ठानी हुई थी, चांद को दो टुकड़े होता देख करके भी उनको कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो ये मौजे जो थे ना ये असल नहीं थे, ये मौजे तो फ्रू थे। ठीक है ना, उसी तरह से दुआएं करना, नबी अलैहिस्सलाम ने बड़ी जबरदस्त जबरदस्त दुआएं भी जो है वो लोगों को दी। ठीक है, अल्लाह इसकी ये वाली मुसीबत को दूर कर दे, अल्लाह इसको जो है वो इल्म के लिए कबूल फरमा ले, इसको जो है वो कुरान मजीद की तफसीर के लिए कबूल फरमा ले। ठीक है ना, तो ये दुआएं भी दी। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम का असल काम ये नहीं था कि दुआएं देते रहे लोगों को या मौजे दिखाते रहे लोगों को, असल काम क्या था, सिखाने का काम। राइट, बुइस्तु मुअल्लिमन, मुझे मुअल्लिम बना करके इस दुनिया के अंदर मबूस फरमाया गया। ठीक है, तो यही काम जो है ना वो फिर नबी अलैहिस्सलाम के वो रसा का भी है कि वो सिखाने के लिए भेजे गए। तो जिन्होंने उनसे सीख लिया ना वो कामयाब हो गए, और जिन्होंने नहीं सीख करके दिया तो वो नाकाम हो गए। हमें भी सीखने के लिए बेचैन रहना चाहिए, और ये अल्लाह ताला की मार्फत जो है ना ये भी सीखने की चीज है। ये उन लोगों से सीखना के जिनको के पहले से मार्फत मिल चुकी है हमसे ज्यादा। 100% मार्फत तो किसी के बस की बात नहीं है अल्लाह ताला के बारे में, 100%, क्योंकि अल्लाह ताला है ही इतने अजीम और इतने जो है वो अल्लाह ताला की शान ही ऐसी है कि हमारी अकल में वो समा ही नहीं सकती। 100% तो कोई भी हासिल नहीं कर सकता, लेकिन हमारे मुकाबले में ज्यादा। ठीक है, अर्रहमानु, कुरान में हुक्म है अल्लाह ताला का, अर्रहमानु फसअल बिही खबीरा, के रहमान के बारे में तुम सवाल करो उससे कि जो उसके बारे में खबर रखता है। क्या मतलब, जो उसके बारे में तुमसे ज्यादा पहचान रखता है, उससे सीखो रहमान के बारे में। तो मार्फत जो है ये सिर्फ अपनी अकल लड़ाने से नहीं, वो भी जरूरी है। अपनी अकल जो है वो जैसे पिछले जुम्मे को भी बात हुई थी, साइड पर रखने के लिए अल्लाह ताला ने हमें अकल नहीं दी है, या अकल ही की बुनियाद पे सब कुछ सीखने के लिए हमें अकल नहीं दी है, बल्कि सीखने के अंदर अकल इस्तेमाल करने के लिए हमें अकल दी है कि हम अकल के साथ, तवज्जो के साथ, गौर के साथ जो है वो सवाल पूछें और गौर से जो है वो जवाब को सुने और गौर से जो है वो दर्स को सुने, इसके लिए अल्लाह ताला ने हमें अकल दी है, और इसको इस्तेमाल जो करता है उसी को बात समझ में आती है, जो नहीं इस्तेमाल करता उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो अल्लाह ताला की मार्फत के लिए बेचैन रहने की ये तफसील है कि हम अपनी अकल को इस्तेमाल करें और जिनके पास मार्फत है उनसे सीखें। और रहमानु फसअल बिही खबीरा। इसके बाद 28वां पॉइंट, 28वां अदब, कि नेमत थोड़ी हो या ज्यादा उस पर शुक्र बजा लाए और फक्र व फाका से तंग दिल ना हो। नेमत छोटी है फिर भी वो नेमत है, बड़ी है फिर भी वो नेमत है। ठीक है, उसके ऊपर अल्लाह का शुक्र बजा लाए। शुक्र की बात उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ सकती जब तक हमें लफ्ज़ शुक्र का मफहूम ना समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसी वजह से इसको बार बार जो है ना वो दोहराना अहम समझते हैं कि शुक्र जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त अदा किया जा सकता है जब आपको मिलने वाली चीज, आपको मिलने वाली चीज को आप अपना हक ना समझें, अपना हक ना समझें, तब शुक्र अदा किया जा सकता है। अगर आप अपना हक समझ करके किसी चीज को वसूल कर रहे हैं कि ये तो मेरा हक था, ये तो मुझे मिलना ही था, ये तो मुझे मिलना ही चाहिए था, ठीक है, क्योंकि आई डिजर्व इट, क्योंकि मैं इसकी मुस्तहिक हूं, तो फिर जो जुबान से शुक्र अदा होता है ये फूटे मुंह वाला शुक्र अदा, क्या कहते हैं उसको, झूठा मुंह शुक्र, ये हकीकी शुक्र नहीं होता, ये बस एक तकल्लुफ होता है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, जजाक अल्लाह, ठीक है ना, ये सिर्फ एक तहजीब मुआशरत वाला एक जुमला होता है जो कि आप बोल देते हैं, बुरी बात नहीं है, लेकिन इसका मतलब शुक्र अदा करना नहीं। ठीक है, तो शुक्र तो उस चीज का अदा किया जाता है जो कि आपको नहीं मिलनी थी लेकिन फिर भी मिल गई। सही है, तो जब तक अपने पास जो नेमतें हैं ना उनको हम ऐसे नहीं समझेंगे ना कि ना मैं इसका मुस्तहिक नहीं था, नहीं थी, फिर आपने मुझे दे दिया, तो उस वक्त तक हमारे दिल से शुक्र नहीं निकलेगा। और अल्लाह ताला जो है ना ये कोई हमारे पड़ोसी नहीं है, अल्लाह ताला हमारे साथ रहने वाले कोई बड़ा या कोई बच्चा या कोई साथ का वो नहीं है कि हमारे जुबान के ऊपर जो है ना वो फैसले कर रहे हैं। अभी हदीस मुबारक भी पढ़ी गई है कि अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को देखते हैं, दिलों को, तो नियत जो है वो क्या है, अल्लाह ताला की डायरेक्ट नजर उधर पड़ती है जा करके। ठीक है, तो दिल के अंदर जो है वो शुक्र की कैफियत ही नहीं है, और जुबान से जो है वो जजाक अल्लाह, जुबान से जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं, जुबान से जो है वो शुक्रुल्लाह पढ़ रहे हैं, लेकिन कैफियत दिल के अंदर कोई नहीं है। तो भाई अल्लाह ताला ने तो तुम्हारी सूरतों को नहीं देखना है ना, जुबान किधर है, सूरत के ऊपर है ना, चेहरे के ऊपर है ना, जुबान चेहरे का हिस्सा है जुबान, तो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या सिखाया है। ठीक, दिल को देखता है ना, तो दिल के अंदर तो फिर कैफियत लानी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि फक्र फाके से दिल तंग ना हो, क्यों, इसलिए कि फक्र फाके का मतलब क्या है कि नेमतें कम हैं, फक्र फाके का मतलब क्या है कि नेमतें कम हैं। ठीक है, तो अब इसके ऊपर ना हमने अभी पिछले दिनों बच्चे से बात करे थे, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ी सलाहियतें दी हैं उसको, अल्लाह ताला उसकी सलाहियतों को अपनी रजा के लिए इस्तेमाल फरमाए, दुआ तो देते हैं, लेकिन बच्चे से बात हो रही थी तो हमने उसको इसी तरीके से समझाया कि ये जो अल्लाह ताला ने आपको ये नेमतें दी हैं ना, सलाहियतें दी हैं ना, तो इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे किसी के पास जो है ना वो बहुत सारा जो है वो माल पैसा हो। ठीक है, अब जो है वो इतना सारा माल पैसा लेकर के जो है ना वो किसी ऐसी जगह पे सफर कर रहा हो कि जहां पे चोर और डाकू भी मौजूद हैं। ठीक है, चोर डाकू मौजूद हैं, तो अब इस शख्स को कि जिसके पास खूब सारा पैसा है जेबों के अंदर या ब्रीफकेस के अंदर, और वो ऐसी जगह से सफर कर रहा है जहां पे चोर डाकू मौजूद हैं और बड़ी वारदातें भी होती रहती हैं वहां पर, खाली मौजूद होना नहीं बल्कि वारदातें भी करते रहते हैं, तो ऐसा शख्स जो है वो कितनी मुसीबत में होगा, कितनी परेशानी में होगा। ठीक है ना, कि डाकू आ जाएंगे मुझे लूट लेंगे, चोर आ जाएंगे मुझसे जो है वो उसको छीन लेंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, मुझे हो सकता है जान से ना मार दें कहीं, जबकि इसके बरक्स एक बंदा है जो कि 10-15 रुपए लेकर के जा रहा है सफर के ऊपर, या खाली आता है, जेबी भी खाली, तो ऐसा शख्स ज्यादा मुतमईन होगा, या वो जिसके पास जो है वो 1 करोड़ रुपए होंगे वो ज्यादा मुतमईन होगा। ठीक है, तो यही मामला अल्लाह ताला की नेमतों का है कि हमारे ऊपर जब ज्यादा नेमतें होती हैं ना, चाहे वो माल पैसे वाली नेमतें ज्यादा हों, चाहे सलाहियतों वाली नेमतें ज्यादा, अकल की नेमत ज्यादा हो, बड़ा जबरदस्त जी, इनका IQ लेवल बहुत ज्यादा है, इनकी याददाश्त बड़ी जबरदस्त है, इनको जो है वो बोलना बड़ा जबरदस्त आता है, राइट, इनको लिखना बड़ा जबरदस्त आता है, यानी अल्लाह ताला ने इनको लिखना सिखाया है, अल्लाह ताला ने इनको बोलने की सलाहियत अता फरमाई है, अल्लाह ताला ने इनको माल दौलत, अल्लाह ताला ने इनको जो है वो खानदान की और औलाद की बड़ी जबरदस्त नेमत अता फरमाई है। ठीक है, तो ये सारी की सारी नेमतें जब हम इनसे लदे हुए होते हैं ना, तो अब याद रखना चाहिए कि हम जिस जगह सफर कर रहे हैं ना, जिसको ये दुनिया कहते हैं, ठीक है, जिस जगह हमारा सफर चल रहा है मौत तक, तो ये दुनिया जो है वो चोरों और लुटेरों से पिटी पड़ी हुई है, पिटी पड़ी है। ठीक है, तो अब इतनी सारी नेमतों के साथ जो हम सफर कर रहे हैं, तो ये चोर डाकू जो है ना, जो के शयातीन की शक्ल में होते हैं, इनको शयातीन कहा जाता है, ये हमसे इन नेमतों को लूटने के लिए हमें उन्होंने अपने निशाने पे रखा हुआ है, हमें ताका हुआ है उन्होंने, ठीक है, हमें उन्होंने ताका हुआ है, और वो बस हमें हमारी नेमतों से जो है वो महरूम करना चाहता है। अच्छा, ये चोर डाकू भी बड़े अजीब किस्म के हैं, ये दुनिया वाले चोर डाकू के जैसे नहीं होते कि हमसे नेमत छीन करके अपने पास ले लेंगे, नहीं, इनको अपने हमारी नेमत अपने लिए नहीं चाहिए, इनको अपने लिए नहीं चाहिए कि हम हमारा पैसा लेकर के ना जो शैतान साहब है वो अपनी जेब में डाल लेंगे, नहीं, बल्कि शयातीन से नेमत के चोरी हो जाने का मतलब यह होता है कि वो हमें इस नेमत से महरूम कर दें, हमें इस नेमत से महरूम कर दें, बेशक उनके पास कुछ भी नहीं आएगा, उनको सिर्फ एक खुशी मिलेगी, बनी आदम को मैंने नेमत से महरूम करवा दिया, बस उनके लिए यही काफी है, बनी आदम अलैहि सलाम की औलाद थी, मैंने उसको नेमत से महरूम करवा दिया, ये मेरी कामयाबी हो गई, ये शैतान की कामयाबी हो। तो अब वो नेमत से महरूम करने के लिए क्या करते हैं, वो हमें जो है ना वो हमसे नेमत की नाकदरी करवाते हैं, जब हम नाकदरी करते हैं नेमत की, तो अल्लाह ताला फिर उस नेमत को हमसे छीन लेते, ये शैतान की कामयाबी होती है, हमसे नाकदरी करवा दे बस, ठीक है ना, वो पिस्तौल लेकर के नहीं आता, वो जो है वो तीर कमान लेकर के नहीं आता, वो कोई और किस्म का ट्रैप लेकर के नहीं आता, वो इसी ट्रैप के जरिए से, नेमत की नाकदरी वाला ट्रैप, इसके जरिए से हमें नेमत से महरूम करवाता है, वो खुद भी नहीं करता, खुद नहीं छीनता हमसे नेमत, वो हमसे गुनाह करवाता है, और छीनता कौन है फिर, अल्लाह ताला छीनता है, जिसने नेमत दी थी ना वही इसको वापस ले लेता है। ठीक है, क्या शैतान को ये इल्म होता है कि किस इंसान के पास कितना ज्यादा ईमान है, ज्यादा ईमान है, शैतान के इल्म के ना होने की तो कोई वजह नहीं समझ में आती कि उसको क्यों इस बात का इल्म ना हो। ठीक है, तो ईमान, हम यहाँ पे ईमान की बात नहीं कर रहे बाय द वे, ठीक है, हम यहाँ पे सलाहियतों की और माल दौलत की और इस वाली नेमतों की बात कर रहे हैं, मतलब हमारे नेकी शैतान को पता होती है, शैतान को हर चीज नहीं पता होती, लेकिन बहुत सारी चीजें पता भी होती हैं। ठीक है, अब आप कोई काम कर रहे हैं तो आपके साथ जो शैतान लगे हुए हैं ना, तो वो अंधे नहीं होते ना, वो देख रहे होते हैं कि आप क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जिसके पास जितनी ज्यादा नेमतें होती है ना, आमाल, ठीक है, आमाल का ज्यादा होना ये भी अल्लाह ताला की नेमत है, किसी को अल्लाह ताला ने माल पैसा दिया है ना, तो ये अल्लाह ताला ने दिया है ना उसको माल पैसा, ठीक है, उसी तरीके से किसी को अल्लाह ताला ने सजदे करने की तौफीक दी है ना, ये भी अल्लाह ताला ने दी है, तो इसने इतने सारे सजदे किए हुए हैं, इसके नाम है अमाल के अंदर इतने सारे सजदे हैं, अब शैतान को पता है कि इसके पास इतने सारे सजदे हैं, इसके पास इतने सारे उम्रे हैं, इसके पास इतने सारे जो है वो सदका खैरात हैं, तो ये जो इतनी सारी नेमत, इबादतों वाली नेमत लेकर के सफर कर रहा है हमारे दरमियान, कैसे इसको इससे महरूम किया जाए, कैसे इससे महरूम किया जाए इसको, लगा रहता है मुस्तकिल इस कोशिश के अंदर, अल्लाह ताला हिफाजत करते रहते हैं उससे जब तक कि हम खुद जो है ना वो अपनी हिफाजत को खत्म नहीं करते अपनी हरकतों की वजह से। ठीक है, जब हम अपनी हरकतों की वजह से अल्लाह ताला को इतना नाराज कर देते हैं ना कि अल्लाह ताला फिर अपनी हिफाजत का जो हिसार है वो हमारे ऊपर से उठा लेते हैं। जैसे ही वो हिसार उठता है ना, बस शयातीन हमारे ऊपर पल पड़ते हैं, उसके बाद पल पड़ते हैं। पल पड़ने का मतलब समझ में आता है, यानी बस वो जैसे कि ऐसे ही है कि आप जो है ना वो एक एक पिंजरे में बंद थे, पिंजरे के अंदर ही, जैसे कि आप कभी सफारी गए, सफारी ये जो जू होता है ना, तो बहुत बड़ा जू उसको सफारी कहते हैं, उसके अंदर जो है ना वो इंसान पिंजरे में होते हैं और जानवर खुले हुए होते हैं, इसको सफारी कहते हैं। जबकि जू किसको कहते हैं कि जिसमें जानवर पिंजरे में होते हैं और इंसान खुले हुए होते हैं, वो पिंजरों के दरमियान सफर कर रहे होते हैं। ठीक है ना, तो सफारी के अंदर जो है ना वो इंसान किस किस्म के पिंजरे में होते हैं, वो एक मोबाइल पिंजरे में होते हैं, एक ट्रक होता है या एक बस होती है, तो वो उसके अंदर होते हैं और बाहर जानवर होते हैं। अब तस्वर करें कि आप एक ऐसे सफारी में जा रही हैं, बस में सफर कर रही हैं उस सफारी के अंदर, ठीक है, कि जिसके बस के ना चारों तरफ जो है वो दरिंदे, वो देख देख करके जो है ना वो भूखे दरिंदे हैं, उनको भूख लगी हुई है कि बस ये जो इंसान है ना, ये जो बस में जा रहे हैं ना, बस किसी तरीके से हमें इनके इन तक रसाई हो जाए, बस उसके बाद हम इनको चीर फाड़ेंगे, खा जाएंगे। ठीक है ना, तो अब जो है ना वो बस जो थी वो एक इस किस्म का शीशा था कि जो के बटन दबाएं और वो शीशा उड़ जाए एकदम से। ठीक है ना, तो अब जब तक वो शीशा अपनी जगह पर है, तब तक तो आप उस उन दरिंदों से बचे हुए। कहीं किसी ने बटन दबा दिया और वो सारे शीशे जो है ना वो चारों तरफ से जो बस के जो शीशे थे, यानी दीवारें शीशे की बनी हुई थी, और वो शीशा भी ऐसा जो कि ऊपर रोल अप हो जाता है, उधर बटन दबाया शीशे रोल अप हुए, फिर क्या होगा आपके साथ? जितने दरिंदे, भूखे दरिंदे, वो सारे के साथ आपके आपके ऊपर पल पड़ेंगे ना, उसके बाद फिर आपकी तिक्का बोटी एक कर देंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने एग्जैक्टली यही बताया कि हर इंसान के साथ जो होते हैं ना वो इतने शैतान होते हैं, एक पता नहीं 150 के करीब शैतान होते हैं, 127 है 123 हदीस के अंदर आता है। अल्लाह ताला की हिफाजत का हिसार हटे तो ये शैतान जो है ना वो तिक्का बोटी एक कर दे, बोटियां नोच ले इंसान की। ठीक है, तो वो तो दूसरे किस्म के शैतान होते हैं जो कि एक्चुअली बोटियां नोचने के लिए तैयार होते हैं। हम उन शयातीन की बात नहीं कर रहे, शयातीन की भी बड़ी कस्में होती हैं, जिस तरह फरिश्तों की कस्में होती हैं, कुछ हवाओं के फरिश्ते हैं तो कुछ जान निकालने के फरिश्ते हैं तो कुछ जो है वो बारिश बरसाने के फरिश्ते हैं, उसी तरह शयातीन की भी कस्में होती हैं, मुख्तलिफ मुख्तलिफ किस्म के शयातीन। कुछ छोटे मोटे होते हैं ना जो घर में आकर के आपको तंग करते हैं, राइट, वो छोटे मोटे शतुंगड़े शयातीन होते हैं, और जो उनके सबसे खतरनाक टीम है ना, ए टीम ऑफ शयातीन, वो कौन से वाले शयातीन है अगर आपसे पूछें, ए टीम शयातीन की जो है उसका क्या काम होता है? ठीक है, ये जो शतुंगड़े होते हैं ना, हम तो उन शतुंगड़ों को ही असल समझ बैठे हैं ना, जो कि घरों में आकर के हमें उल्टे सीधी भाव भाव करते रहते हैं, वो जी टीम होती है शयातीन की। शयातीन की ए टीम जो होती है ना उसका क्या काम होता है, ये जरा जल्दी से आप बता दें। हस्बैंड वाइफ को जो लड़ाई करवाते हैं, मियां बीवी में जुदाई डालने वाले हैं? नहीं, ये समझ लें कि ए टीम शयातीन की जो होती है ना, तो उसके अंदर जिसको के गोल्ड मेडल मिलता है ना, ए टीम के अंदर से जिसको गोल्ड मेडल मिलता है, ये वो होते हैं जो कि मियां बीवी में लड़ाई करते हैं। ठीक है ना, तो आजकल बस लगता है कि ए टीम वालों में से लगता है सबको ही गोल्ड मेडल मिल रहा होगा, क्योंकि हर जगह मियां बीवी की लड़ाई चल रही होती है, तो कितने गोल्ड मेडल ले लेकर के, वो तो ओलंपिक्स, शैतीन के ओलंपिक्स जो है ना उसके अंदर पता नहीं। ठीक है, तो ए टीम का काम क्या होता है, ये तो मैं आपसे कह रहा हूँ, ए टीम कौन कौन होता है, यानी वो क्या काम करते हैं, फिर मियाँ बीवी की लड़ाई भी उसी वजह से भी होती है। लेकिन मियाँ बीवी की लड़ाई जो है ना, ये तो एक 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 छोटा सा एक मैच है, असल में इनका फंक्शन क्या होता है, ईमान से महरूम करना कैसे करते हैं वो, ईमान से महरूम, यही तो पूछ रहे हैं। ईमान के दुश्मन जो अल्लाह का जिक्र भुला देते हैं, नाशुक्री करवाना, वसवसे डालना, वसवसे डालने वाले ये ए टीम वाले नहीं होते, ये बी टीम वाले होते हैं। ये बी टीम होती है जिसको खन्नास कहते हैं, ये वसवसे डालती है। ठीक है, ए टीम शयातीन पता है क्या करते हैं? ए टीम शयातीन ये करते हैं कि गुनाहों को मुजैन बना करके पेश करते हैं, गुनाहों को मुजैन बना के पेश करते हैं, यानी नेकी बना करके पेश करते हैं, और नेकी को जो है ना वो गुनाह बना करके पेश करते हैं इंसान के सामने। वज़ैन लहुम शैतान, कुरान मजीद में है ना, कि इनके गुनाहों को, इनके नाशुक्रियों को, इनके जो है वो शिर्क को, इनके कुफर को शैतान ने मुजैन कर दिया इनके लिए, ये ए टीम ऑफ शयातीन। और जब मुजैन हो जाते हैं तो फिर उसके बाद ईमान इंसान का रह नहीं रहता, क्योंकि वो गुनाह को नेकी कहना शुरू कर देते हैं ना, इसके बाद उसका ईमान खत्म हो जाता है। ठीक है, और उसी तरीके से शौहर जो है ना वो उल्टी हरकतें कर रहा होता है, उसको वो सीधी समझ रहा होता है, और बीवी जो है वो उल्टी हरकतें कर रही होती है, जिसके बारे में पिछली क्लास में भी बात हुई थी, बदतमीजी कर रही होती है, लेकिन उसको जस्टिफाई कर रही होती है, उसको समझ रही होती है कि मैं तो बड़ा अच्छा काम कर रही हूँ, मैं शौहर को फितने से बचा रही हूँ, मैं खुद ही इतना नाक में उसके दम कर दूं कि वो दूसरी शादी करने का सोचे भी ना। ठीक है ना, तो ये तो बड़ा नेकी का काम हो गया ना, वो ये दूसरी शादी करता तो उसकी जिंदगी और जो है वो मुश्किल हो जाती, उसको दो घरों का बोझ उठाना पड़ जाता, और हमारे मशायख की भी खिलाफ वर्जी हो जाती है ना, हजरत जी की बात की जो है वो खिलाफ वर्जी कर बैठता अगर दूसरी शादी कर लेता, तो उसका बेहतरीन हल क्या है कि मैं इतना उसके नाक में दम करूं, इतना उसको तंग करूं कि वो कहे यार तो एक मुझसे नहीं संभाली जा रही, दूसरी कहां से लेकर दिया। ठीक है, तो शौहर के साथ बदतमीजी करने को मुजैन बना करके पेश कर दिया उसने। ठीक है, तो अब जब बीवियां करती हैं ये वाला काम, ठीक है, और शौहर जब ये वाला काम करते हैं, अपनी बुराई को, अपनी बुरी आदतों को जो है वो नेकी समझना, ठीक है ना, तो फिर क्या होता है घर के अंदर? लड़ाई होती है दोनों के दरमियान। ठीक है, तो लड़ाई होना ये तो कॉन्सिक्वेंस है, ये तो नतीजा है उनकी इस हरकत का, कि वो अपनी गलतियों को नेकी बना करके पेश करते, यानी शौहर की गलतियों को नेकी बना के पेश करते हैं और बीवी की गलतियों को नेकी बना करके पेश करते हैं। ठीक है ना, और जो नेकी थी उसको बुराई बना के पेश करते हैं। क्या मतलब? शौहर की अतात करना, शौहर के साथ तमीज के साथ रहना, शौहर की खिदमत करना, अरे ये तो गुनाह का काम है, ये तो पागलपना है, ये तो बेवकूफी है। करते हैं कि नहीं करते हैं, जल्दी से बताएं, नहीं कोई हैंड रेज करके बताएगा जी मेरे साथ तो यही होता है, ये तो इंतहाई बेवकूफी का काम है, ओ बेवकूफ औरत है, शौहर की खिदमत कर रही हो तुम, राइट? ठीक है, सासें तो कम से कम उससे एग्री कर सकती है ना कि उनके बहू जो होती है वो खिदमत नहीं कर रही होती तो शैतान की बात मान रही हो, आप तो खैर नहीं करेंगे इससे एग्री, लेकिन आपकी सास तो करती होंगी ना। ठीक है, तो जब ये हो रहा होता है कि घर के अंदर नेकी को बुराई, बुराई को नेकी, तो उसके बाद फिर मियाँ बीवी के दरमियान टकराव होता है, लड़ाई होती है, दंगा फसाद होता है, औलाद भी बर्बाद होती है, नस्लें बर्बाद होती हैं, है ना, मैका और ससुराल उनके दरमियान भी जंग होती है। ठीक है, तो बहरहाल बात कहाँ से शुरू हुई थी कि नेमत थोड़ी हो या ज्यादा उस पर शुक्र बजा लाए और फक्र व फाके से तंग दिल ना हो, क्योंकि फक्र व फाके का मतलब ये है कि नेमतें कम हैं आपके पास, इसका मतलब ये है कि जो डाकू और चोर है ना, तो उनकी भी तवज्जो आपके ऊपर कम होगी, एंड यू हैव लिटिल टू लूज, एंड यू हैव लिटिल टू लूज। ठीक है ना, नेमतें ज्यादा हैं तो भाई बहुत परेशान रहने की जरूरत है, बहुत फिक्रमंद रहने की जरूरत है कि कहीं मुझसे गलती ना हो जाए और मैं जो हूं ना वो कोई ऐसा ब्लंडर ना कर दूं कि अल्लाह ताला जो है ना वो मेरे हिफाजत हिसार को उठा लें और ये शयातीन मेरे ऊपर हमला कर दें और मुझे अल्लाह की नेमतों की नाकदरी का मुर्तकिब कर दें, नाशुक्री का मुर्तकिब कर दें। और उसके बाद क्या होता है जब नाशुक्री करता है, तो अल्लाह ताला का ऐलान है, वला इन कफरतुम इन अजाबी लशदीद। ठीक है, तो अब ये है प्रोसेस। ठीक है, तो नेमत छोटी हो या नेमत ज्यादा हो, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे, क्योंकि ल इन शकर तुम ला अजीदन। ठीक है, और अगर नेमत कम हो ना तो फिर अल्लाह अल्लाह कर जाए, अल्हम्दुलिल्लाह आपने मुझे कम आजमाइश में डाला है, अल्लाह आपने मुझे कम आजमाइश में डाला है, आपका एहसान है मेरे ऊपर। ठीक है, क्या शैतान को मालूम होता है कि हम क्या सोच रहे हैं? नहीं, हमारी सोच का तो शैतान को मालूम नहीं होता है, लेकिन हम अक्सर जो है ना वो अपनी सोच जो है ना वो गिव अवे कर देते हैं, वो हम रिवील कर देते हैं, तब शैतान को मालूम हो जाता है। ठीक है, और ये जो है ना ये वाले जो है ना सोच वोच के जो चक्कर में रहता है ना जो शैतान, ये वो वाला होता है, बी टीम वाला शैतान होता है। ठीक है, वो खन्नास जिसको कहते हैं, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरि नास मिनल जिन्नति वन्नास। वो भी क्यों सोच के बारे में, यानी बिल्कुल दिल की नीयत जो होती है ना, जो बिल्कुल दिल की जो फीलिंग होती है, वो तो सिर्फ अल्लाह को पता है, वो किसी और को नहीं पता। ठीक है, लेकिन सोच एक ऐसी चीज होती है कि जो कि जहन के अंदर ना, ये आपके जो सवाल है ना, एक्चुअली इसका सही जवाब ये होगा कि जो जहन के अंदर फिर हमारे एक चीज पक रही होती है ना, ये फिर दिल की नीयत से बढ़ करके एक चीज हो जाती है। इसको कहते हैं कि आपने ना किसी, यानी जैसे दिल के अंदर एक ख्याल आया, गुनाह का ख्याल आया, ठीक है, अब अगर आप उस गुनाह के ख्याल को जो है वो इग्नोर कर दें, वो खत्म हो जाएगा, वो पकेगा नहीं आपके अंदर। ठीक है, अल्लाह ताला को पता था कि आपके अंदर आपके दिल के अंदर गुनाह का ख्याल आया, आपने उसको चलता कर दिया, आपने उसको अस्तग़फ़िरुल्लाह में पढ़ दिया, आपने जो है वो उसको जो है नापसंद कर लिया, वो चला गया, दैट्स इट। अल्लाह ताला को पता था, अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि भाई नामे अमाल में नेकी लिख दो, इसने गुनाह के ख्याल को जो है ना अपने दिल से बाहर निकाल दिया है, नेकी लिख दो इसके लिए। शैतान साहब कुछ नहीं कर सके, शैतान साहब को पता नहीं चला कि ये सब कुछ हुआ आपके साथ, शैतान साहब को नहीं पता चला ये। शैतान को कब पता चलेगा? जब उस गुनाह के ख्याल को फिर आप सोचना शुरू कर देंगे, ठीक है ना, उसके ऊपर जो है ना वो, यानी जिसको कहते हैं ना, यानी ड्रोल करना शुरू कर देंगे उसके बारे में, जो वो प्लानिंग करना शुरू कर देंगे, यानी बेसिकली आप उसके ऊपर डेरे डालना शुरू कर देंगे उसके बारे में, है ना, अब शैतान को पता चल जाए, अब शैतान को पता चल जाए। ठीक है, और फिर वो क्या करेगा, अब जो है ना वो उसको एक्सप्लॉइट करेगा, क्योंकि उसको पता चल गया है कि अब आप क्या सोच रहे हैं। ठीक है ना, अब वो उसको जो है ना वो मैग्निफाई करेगा, बढ़ाएगा आपके अंदर आइडियाज डालेगा, अच्छा अब इसके ऊपर ऐसे अमल कर सकते हो, ऐसे जो है वो फलाने शख्स को जो है वो धोखा दे सकते हो, ऐसे जो है ना वो फलानी लड़की के साथ जो है वो तुम ताल्लुक बना सकते हो, या फलाने लड़के के साथ जो है वो ऐसे जाकर के मिल सकती हो, ऐसे उसको कॉल कर सकती हो। ये कहाँ से आ रहे हैं ख्यालात? ये शैतान डाल रहा है ख्यालात। क्यों शैतान डाल रहा है ख्यालात? क्योंकि अब उसको पता चल गया है कि आप क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका सवाल का मुकम्मल जवाब हो गया। चलो जी, इल्म नहीं था, यही हाल था, अब भी कभी करवा देता है। पता नहीं आप कौन से वाली चीज के बारे में बात कर रहे हैं। बहरहाल, तो 28वें पॉइंट के ऊपर हम इस क्लास को रोकते हैं, और अगली क्लास बस 2-3 मिनट में चलना शुरू करते हैं। मिसाली माह वाली क्लास, तो थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए।